गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालयै कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। एक बार देवताओं से और असुरों से खूब जोरों का युद्ध लगा। दैत्य दानव देवताओं के साथ में युद्ध कर रहे थे। दोनों तरफ का पराक्रम बराबर था। एक तरफ से दुर्गा जी और इंद्र वरुण कुबेर जम जितना देवता देवी लोग थे अपने अस्त्र शस्त्र लेकर के लड़ रहे थे और दूसरे तरफ से बलि महाराज जी के अधीन सारी दैत्य सेना लड़ रही थी। अंत में किसी प्रकार से देवताओं की जीत हुई और देवता लोग उसमें दानव लोग उसमें हार गए। हारने के बाद में देवताओं की बड़ी भारी एक मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ये निर्णय हो रहा था कि किसके वजह से ये युद्ध में जय हुई और देवता असुर लोग पराजित हुए। ए जल्दी करो, ए जल्दी करो, जाओ, ए बातचीत मत करो, चुपचाप जाओ, लड़ाई मत हो, चुपचाप। क्या हो गया, जल गई ना? कहां पर? नीचे ये दीपक जलाते हैं। आइए मना, ए पुजारी दीपक किसी को मत जलाने दो। वहां एक आदमी और जल गया। वहां पर किसी को दीपक मत जलाने दो। तो देवता लोग मीटिंग करने लग गए। इंद्र बोले कि मैंने युद्ध जीता है। दुर्गा जी ने कहा मैं अपने आठों हाथों से युद्ध करके और उनको परास्त किया। गणेश जी ने कहा जे मैंने युद्ध में जय किया। कार्तिक जी बोले जे मैंने ही युद्ध में जय किया। पवनदेव बोले जैसे मैंने इतनी जोर से आंधी चलाई कि ये सब लोग भाग खड़े हुए। और वर्षा बरसाने वाले देवता ने कहा मैं इतनी जोर से वर्षा की जिससे कि ये लोग भीज करके भाग गए। सब देवता लोग अपनी अपनी बड़ाई वहां पर बतला रहे थे। इतने में सब लोगों ने बैठे हुए देखा कि एक ऊपर से बहुत बड़ा तेज आ रहा है और आकर के दूर एक जगह पर वो बैठ गया। सब लोगों ने कहा भाई ये बड़ा तेज आया, कहां से आया और ये कौन सा तेज है? कोई निर्णय नहीं कर सके ये कौन है। पवनदेव ने कहा या अग्निदेव ने पहले कहा मैं अभी जाता हूं और लेकर के खबर आता हूं कि ये कौन है, आकाश से ये क्यों उतरा और यहां पर क्यों आया, कौन है ये? अग्निदेव कह रहे थे जिसे मैंने ही असुरों को हराया। उनको बड़ा अपना अभिमान था कि मैंने हराया, मैं ही सब कुछ देने वाला हूं, करने वाला जगत का हूं, उनको अभिमान था। वो गए और वहां पर देखा ये एक कोई पुरुष वहां है और उससे ज्योति निकल रही है। उन्होंने जाकर के पूछा आप कौन हैं? उन्होंने कहा जे आप कौन हैं? उन्होंने कहा जे मैं तो पवनदेव अग्निदेव हूं। आपका आपका परिचय क्या है, तो विश्व में जो कुछ रहेगा उसे मैं जला करके खा कर सकता हूँ। अभी देखा युद्ध हुआ और उस युद्ध में मैंने असुरों को जला करके खा कर दिया, वो भाग खड़े हुए। मैं नहीं रहता तो ये युद्ध में जय होना देवताओं के लिए बड़ा ही कठिन था, इसलिए मैं विश्व में सबसे अधिक शक्तिशाली हूँ। लोग मेरी उपासना करते हैं और उनका फल, कर्मों का फल मैं देता हूँ। लोग यदि मेरी उपासना नहीं करेंगे तो उनको कर्मों का फल भी नहीं मिलेगा। उन्होंने कहा, अच्छी बात, आप तो बड़े शक्तिशाली मालूम होते हैं। एक सूखा सा छोटा सा तीर्ण दे दिया, इसको आप जला दीजिए। अग्नि ने कहा, जैसे अरे जलाने के लिए कहो तो पहाड़ पर्वत जला दूं, विश्व को जला दूं, ये जलाना मेरे लिए क्या है, ये तो मेरा अपमान करना है, इसको जलाना। तो उन्होंने कहा, अच्छा जला तो दो। तो उन्होंने थोड़ी सी अपनी शक्ति लगाई किंतु जला नहीं, फिर पूरी शक्ति लगाई तभी नहीं जला, पूरी के पूर्णतम शक्ति लगा दी किंतु वो छोटा सा तिनका वो जला नहीं, सूखा। तो वो जो पुरुष बैठा था वो कुछ मुस्कुराने लगा, इनको बड़ी लज्जा हुई। फिर पूछने का साहस नहीं हुआ जे आप कौन है, वो लौट गए। इंद्र ने पूछा जे आप पता लगाए जे वो कौन है, तो नहीं हमको पता नहीं चला जे ये कौन है, वो तो कोई बड़ा दुर्धर्ष आदमी मालूम पड़ता है, वो तो मालूम ही नहीं था जे कौन है। पवन देव वहां से उठे, पवन देव बड़े अभिमान के साथ में, दर्द के साथ में वहां पर गए, पूछा जे आप कौन है। उन्होंने कहा जे आप कौन है, तो मैं पवन दूं। अच्छा आपका परिचय क्या है, तो विश्व ब्रह्मांड को मैं तिनके के समान सबको उड़ा करके खत्म कर सकता हूँ, पर्वतों को तोड़ फोड़ करके खत्म कर दूंगा, विश्व ब्रह्मांड को एकदम उड़ा दूंगा। अभी देखा नहीं असुरों की सेना को हमने कैसे तहस नहस कर दिया, ये मेरी शक्ति के वजह से ही असुर लोग हारे हैं, वो तो आप तो बड़े बलवान हैं। अच्छा इस सूखे हुए तिनके को आप जरा उड़ा तो दीजिए, अरे आप मेरा अपमान कर रहे हैं, अपमान नहीं तुम सचमुच में उड़ा दो। तो उसने चेष्टा की थोड़ी सी फू जैसी, किंतु वो टस से मस नहीं हुआ। फिर अपनी शक्ति लगाई कुछ तो भी नहीं हुआ, तो बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अच्छा अच्छा देखो, बस खूब जोर से 49 प्रकार के पवन अपने पूर्ण वेग के साथ में लग गए, किंतु वो टस से मस तिनका नहीं हुआ। तो वो हाथ जोड़ दिए पवन देव, इसे इस तिनको को मैं कुछ नहीं कर सका, वो लौट गए। इसके बाद में पूछा उन्होंने देवताओं ने, ये कौन है, तो मैं तो पता नहीं लगा सका जी ये कौन है, है कोई दुर्धर्ष, बड़ा बलवान कोई आदमी मालूम पड़ता है। इंद्र बोले, ये तुम लोग ठहरो, तुम लोगों से कुछ पता नहीं चलता, मैं अभी जाता हूं। हाथ में वज्र ले लिए और चल पड़े। जब वहां पर पहुंचे उस स्थान पर देखा ये कुछ नहीं है, वहां पर देखा नारद जी को। नारद जी से पूछा उन्होंने, जे भाई ये कौन था भाई, इसको देखा नहीं, मैं तो इसका परिचय पाने के लिए आया था। मैं कहा जी आप नहीं जानते और आप जान भी नहीं सकते, इसको सहज रूप में नहीं जाना सकते, ये स्वयं भगवान है, परब्रह्म है, सर्वशक्तिमान है, इनकी शक्ति से ही सब में शक्ति है, इनके शक्ति से ही आग जलाता है और इनके शक्ति से ही पवन देव चलते हैं, इनके शक्ति से ही ब्रह्मा जी जगत का सृजन करते हैं, उनकी शक्ति से ही शंकर जी ये विश्व का संहार करते हैं, उनके शक्ति से ही दुर्गा दुर्गा बनी हुई है, उनके शक्ति से ही गणेश कुछ फल देते हैं जगत में, नहीं तो वो फल नहीं दे सकते। उन्हीं के इच्छा से सूर्य तपते हैं, नियमित रूप में चलते हैं, ये विश्व ब्रह्मांड की मूल शक्ति वही है। जो लोग भगवान को छोड़ करके दूसरे देवी देवताओं को शक्तिमान मान करके, फल देने वाला मान करके पूजा करते हैं, उनकी पूजा व्यर्थ होती है, किंतु लोगों के समझ में नहीं आती। बहुत देवता देवियों की उपासना करते हैं, भगवान की भक्ति में ये पूजा बाधक है। ना पूजी वे देवी देवा, विभिन्न देवताओं की पूजा मत करो, यदि एक स्त्री विवाहित होने पर भी 10 पतियों के यहाँ दौड़ती है, 50 पतियों के यहाँ दौड़ती है पशुओं की भांति, तो वो व्यभिचारिणी कहलाती है। ऐसे ही साधक एक साधे सब सभे और सब साधे सब जाए, यदि एक की साधना कृष्ण की साधना करने से तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टि, उनकी सब जगत की तुष्टि हो जाती है। और यदि सब एक एक देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हजारों एक ही आले में हजार रख दिए देवी देवता और सबको प्रसन्न करने के लिए चेष्टा करते हैं या कोई करती है, तो वो सोचेंगे ठाकुर जी अच्छा उसको तो बुलाई रही है, वो आ जाएगा, वो समझता है जैसे अच्छा तो वो सूर्य की सबकी देवताओं की उपासना करता है, मैं नहीं जाऊंगा तो क्या होगा, वो तो हो ही जाएगा। एक गांव में एक सरोवर खुद रहा था, सरोवर जानते हैं सरोवर, तो सरोवर खुद गया तो पूजा करने के लिए राजा ने आदेश दिया, अब सरोवर बन गया है पूरा, अब इसको भरना है, कल सब लोग अपने अपने घरों से दूध लाएंगे और इसमें एक एक लोटा भी उसमें दूध दे दिया जाएगा तो कलकत्ता नगरी जैसी नगरी इसमें कितने लाख करोड़ आदमी हैं, कितने करोड़, तो 20-25 करोड़ आदमी यदि एक एक लोटा भी दूध दे तो सरोवर क्या होगा, एकदम भर जाए, उफन जाएगा ने? इसलिए बादशाह ने कहा हमारे राज्य में जितने लोग हैं सब लोग एक एक लोटा दूध ले आएंगे और इसमें ढालेंगे, इस तरह से ये भर जाएगा। राजा सोच रहा है जैसे ये भर जाए, अब हुआ क्या, दूसरे दिन सब लोगों ने सोचा भाई करोड़ों आदमी हैं, करोड़ों लोटा में ले आएंगे दूध भर देंगे तो भर ही जाएगा, हम एक नहीं ले जाने से ही क्या हो जाए। सब लोगों ने ऐसा ही सोचा जब वो तो करोड़ों लाएंगे, एक आदमी हमारा एक लोटा नहीं रहेगा तो क्या होगा, सब लोग ऐसा ही सोच करके कोई दूध नहीं लाया, एक लोटा भी उसमें दूध नहीं लिया। ऐसे ही जो लोग सब लोगों की उपासना करते हैं तो सोचते हैं और देवता लोग समझेंगे तो मुझे क्या अकेले गरज पड़ी है, वो सबकी उपासना करते सब लोग जाएंगे उन पर दया करेंगे उनकी इच्छा पूर्ण करेंगे, मैं ना तो रहूं ऐसे ही। विशेष करके भगवान कृष्ण तो जाएंगे ही नहीं, जहां पर हमारे अधीन वाले लोगों को ये सब बुला रहे हैं तो ये तो मेरा निरादर है, मैं नहीं जाता, वो नहीं जाते तो कोई नहीं जाता, इसलिए सबकी दया से वो आदमी वंचित हो जाता है जो सब देवताओं की पूजा करता है। और जो एक के अधिक अधीन होता है, एकांतिक उपासना करता है, वो यदि थोड़ी सी गलती भी कर दे तो कोई बात नहीं, अनन्य चिंतयंतो मांगे जना पर्च उपासते तेषां नित्याभिजुक्तानां योगक्षेम, भगवान प्रतिज्ञा करते हैं अनन्य रूप से जो हमारा भजन करता है, किसी का दूसरे का भजन नहीं करता, मेरी ही उपासना करता है, तो मैं सब कुछ छोड़ करके मैं भी अनन्य हो करके केवल मात्र उसकी सब जोग और क्षेम सब बहन कर देता हूँ, धो करके ले करके दे देता हूँ, इसमें कोई भी संदेह की बात नहीं। किंतु जो लोग अनन्य नहीं हो करके उसकी भी उपासना उसकी 10 देवताओं की उपासना करते हैं, मैं वहाँ नहीं जाता, पंचायत में मैं नहीं जाता, मुझे पंचायत भली नहीं लगती है। इसलिए यदि कृष्ण को प्रसन्न करना है तो अनन्य बनना है। एक आदमी आ गया, महाराज जी हम मंत्र लेंगे, हमने उससे पूछा कि तुम्हारे घर में कौन कौन से देवता हैं, तो गणेश जी हैं, शंकर जी हैं, हनुमान जी हैं, वो सूढ़ वाले कौन, गणेश जी हैं और दुर्गा जी हैं, सभी लोग सब देवता हैं, करीब करीब 50-60। तो मैंने कहा जैसे यहाँ पर तो इस दुकान में केवल एक की पूजा होती है, यदि तुम सबको छोड़ करके एक को भजन करो तब तो होगा, तब तो तुम यहाँ आकर के हरिनाम लो और भजन करो, सब कुछ छोड़ना होगा। बस कान में हाथ दे करके बस। कृष्ण ऐसे ही हैं, यदि कृष्ण को भजन करना है तो वो पूरा लेते हैं, एक एक मन लेंगे, एक मन से कम नहीं लेंगे, पूरा मन चाहिए, उसमें से थोड़ा सा कटा हुआ आप वो पार्ट नहीं लेंगे, पूरा लेते हैं। यदि कोई दिल अपना पूरा दे दे तो वो लेंगे, और नहीं तो जाओ उधर ही जाओ। इसलिए गीता में भी कहते हैं सर्वधर्मान प्रत्यज्य माम, फिर माम के बाद में क्या है, एकम माम एकम, केवल अकेले मुझको, हमारा शरणागति आओ, किसी दूसरे में बंटवारा में मैं नहीं जाता, अकेला मन हमको दो पूरा रूप से, हमारा शरणागत हो तब तो वो कृष्ण ग्रहण करेंगे, नहीं तो ग्रहण ही नहीं करेंगे, 10-20 वालों को नहीं करेंगे। इसी तरह से भागवत में भी दिखाया गया ब्रह्मा जी उन्हीं की आराधना करते हैं, शंकर जी उन्हीं की आराधना करते हैं, सब देवता लोग उन्हीं की आराधना करते हैं। एक समय की बात है, सब देवताओं में कुछ कंफ्यूजन हो गया, कंफ्यूजन हो गया नहीं? भाई सबसे आराध्य बड़ा कौन है, किसी ने कहा जे ब्रह्मा, किसी ने कहा विष्णु, किसी ने महेश, परीक्षा का भार दिया गया भृगु महा ऊपर में, वो शंकर जी के यहाँ का भूत विशाच लेकर के आता है, प्रणाम भी नहीं किया, सब समय अपवित्र रहता है और श्मशान की धूली और भस्म लगाता है, तुम तो छूने योग्य भी नहीं, अरे हमारा शिष्य होकर के हमको ऐसा कर, अच्छा तो ठहर, तुझसे सुर लेकर के मार में दौड़ भग करके ब्रह्मा जी के यहाँ गए, ब्रह्मा जी को जहाँ पर बैठे थे बस तंग करके उसी आसन पर बैठ गए, प्रणाम प्रणाम कुछ नहीं किया, जैसे हमारा लड़का होकर के हमारे सामने ऐसे बढ़कर गया, तन मन ऐसे तन करके बैठ गया, अरे तुमको ज्ञान नहीं जब मैं तुम्हारा बाप हूं, तो उन्होंने कुछ केयर नहीं किया, तो ब्रह्मा जी बोले अभी तुमको संपा देता हूं, याद नहीं है मरीची के लड़कों ने हमारे प्रति जो दुर्व्यवहार किया, उनको कैसे मैं अभी संपात कर दिया, तो इसी तरह से तुमको भी, इतने में वहां से वो चले गए, और चले गए कहां, क्षीर समुद्र में, जहाँ पर लक्ष्मी जी उनके पैरों को अपनी गोदी में लेकर के संभाल रही थी, और वहाँ जाकर के विष्णु जी सोए थे आराम से, बस एक लात उनकी यहाँ पर छाती में बड़े जोर से मारा, मारते ही प्रभु ने उनके चरण पकड़ लिए, बोले जो हो वज्र के समान हमारा ये मस्तक छल, और कोमल कमल से तुम्हारे पैर, तुमको चोट लग गई होगी, हमें क्षमा कर दो, बस साथ ही साथ में वो पानी जैसे हो गया और रोने लग गए और विलाप करके क्षमा मांग, आप ही सबसे श्रेष्ठ, ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता। इसलिए यदि भजन करना है तो सबके प्रति गुरु बुद्धि रखा जाए, आदर है भगवान के ही वो सभी लोग हैं, ऐसा आदर बुद्धि तो रख सकते हैं, किंतु हृदय में आराध्य के रूप में एक निष्ठा कृष्ण में ही होगी, राधे जी में होगी, तब तो भाई ब्रज का भजन होगा, और नहीं भजन नहीं, किसी लौकिक कामना के लिए कृष्ण का भजन नहीं करना है, ये भजन करना है केवल मात्र कृष्ण का प्रेम हो, ब्रजवासियों ने जैसे कृष्ण की सेवा की थी ऐसा, ये बहुत महान चीज है, देवताओं के लिए भी ये सुलभ नहीं है। अब तो बज गया कितना, 6 बज गया ना, हाँ अब रहने दो यहीं पर। गावश्च कृष्ण मुख निर्वतवेनु गीत पीयूषोन्दवित कर्णकूटै पिबन्त शावाश्मतस्तनपय कौलास्मतस्थो गोविन्दात्मनि दिशाशु कलाश कृष्ण। आज एक श्लोक की बात थी तो वो समय हो गया, कल हम पूछेंगे, कल फिर तो तैयार होना, अमनाय प्राह तत्त्वम हरि में, कल ये इसको सब लोग बताएं, तैयार रह जाना। कृष्ण बंसी बजा रहे हैं, गोपियां कह रही हैं घरों में, संक्षेप में बतला रहा हूं थोड़ा सा, गोपियां घर घर में बैठी हैं, गोपियों की दिनचर्या कैसे होती है इसमें दिखलाया गया, हमारी दिनचर्या सो करके उठती हैं या उठते हैं, और उठते ही पहले बात हमारे दिमाग में ये आई जो कहां से कल छोड़ा था, कल वाली चिंता आज हमारे यहाँ पर आए। तरह तरह की जो जटिल समस्याएं हैं वो हमारे मस्तिष्क में घूम जाती हैं, उसी की चिंता करते हैं, अच्छा या बुरा। गोपियों की चिंता ऐसे नहीं, और दिन भर वही सही करते हैं, फिर शाम को फिर खाते पीते और फिर सो जाते हैं। कभी भगवान का नाम यदि हुआ तो ले लिया, नहीं तो कोई बात नहीं, वो तो आप लोग ले लेते हैं या ले लेती हैं, सब संसार वाले कोई नहीं लेते, उनको फुर्सत नहीं है हरि नाम लेने का, न विश्वास है असल में, तो न तो विश्वास है और न तो उनको फुर्सत है। जिनको विश्वास और फुर्सत भी है तो उस रूप में नहीं लेते जैसा कि लेना चाहिए। उनको जो साधक हैं उनको गोपियों के चरित्र से यह सब सीखना चाहिए। सवेरे उठ करके कृष्ण की चिंता करती हैं, कृष्ण के विरह में जलने लगती हैं, और इसके बाद में स्नान करके श्रृंगार करती हैं, किसके लिए, कृष्ण के लिए ही अपना श्रृंगार करती हैं गोपियां। और कृष्ण की कथाओं में कल कृष्ण से कैसे मिलन हुआ, कैसे वियोग होगा, बस उसी की चिंता, और उनसे कैसे मिलन होगा, कैसे हम उनकी सेवा कर सकती हैं, ये सब चिंता। उसके बाद में स्नान किया, श्रृंगार किया और कृष्ण को दर्शन देने के लिए चल पड़ती हैं। रसोई बनाया कृष्ण के लिए, और फिर कृष्ण वन में चले गए तो लौट आए, और घर घर में बैठ करके बस कृष्ण की ही बातें हो रही हैं। एक दल की जितनी गोपियां हैं वो उसको सुन रही हैं, और ऐसे ऐसे हजारों दल हैं, उनका जूत है अपने अपने जूत के अनुसार में कृष्ण का लीला चरित्र प्रदान कर रहे हैं। आदमी चुपचाप बैठेगा तो कुछ ना कुछ जरूर करेगा, कोई बात जरूर करेगा, माला ले लिया हाथ में, मन इधर उधर बातचीत करता है, और यदि कोई दूसरा आ गया, कोई व्यक्ति ना वहां पर बैठ गया जहां हरिनाम करते हो, तो या तो वो छेड़ देगा, ना आप ही छोड़े, कैसे आए, क्यों आए, क्या बात है, यहीं से आरंभ हो, और हरिनाम की माला हाथ में रह जाएगी, बस चर्चा चलने लग गई। गोपियों का ऐसा नहीं है? एक गोपी दूसरे से कह रही है, गावश्च कृष्ण मुख निर्गत वेन गीत, ओहो कृष्ण का मुख के मुखारविंद से बंसी से वेणु ध्वनि निकली। जब वेणु ध्वनि निकली ब्रह्मांड को पार कर गई, और ब्रह्मांड को पार करके कारण बारी को पार करके सिद्धलोक को पार करते हुए बैकुंठ अयोध्या द्वारका मथुरा पार करके वृंदावन में प्रवेश किया, और प्रवेश करके गायें चर रही हैं, गायों ने सुना, ज्यों ही वो बंसी ध्वनि गई बस कान उसको खड़ा कर दिया, अभी ऐसे जिधर से बंसी की आवाज उधर में लगा दिया। पीयूष उद्भित कर्ण पूटई तुरंत, मानो बंसी की ध्वनि अमृत, और उस अमृत का पान करने लगी वो गायें अपने कानों से। उसमें उनके मुख में सावास्मत तनपय कवलास्मत स्थु, घासें चर रही है, झट करके मुख ऊपर उठाया और मुख में जो घासें थी वो घासें मुख ही में रही, उसको भीतर गले से नीचे नहीं ले गई। गायें जब चरती हैं तो घास को खा करके पेट में ही दर में नहीं ले जाती, वो गले के पास ही यहाँ पर कहीं रख देती है, और जब चरना जब खत्म हो गया ना तो उसको भीतर से ले आकर के फिर उसको पागुल करके उसका दूध बनाकर और उसको भीतर में फिर ले जाती है। तो ये गायें घासें खा करके अभी निगलने वाली थी, बंसी की ध्वनि कानों में पड़ी और एकदम वो न तो बाहर निकला और न भीतर गया, यहीं पर लगा हुआ है, घासें भीतर में नहीं जा रही, सुन रही है। और उनके सावा सुतस्तन पया कौलत्तस्त, उनके जो बच्चे थे बछड़े जो दूध पी रहे थे, यही बंसी की ध्वनि उनके कानों में गई, बछड़े दूध पी रहे थे, बस स्तन उनका मुख में है और जो दूध खैचा है चूसा है वो रह गया मुख में ही, और यहां से गिर रहा है बछड़ों में, होश नहीं, अब उसको निगलना भी भूल गए, दूध को अपने आप दूध बच्चे पीते हैं अपने आप चला जाता है पेट में, न भीतर जा रहा है न बाहर आ रहा है, और ऐसे कान रखे हैं और उनका मुख है अपनी माँ के स्तन में और बस ऐसे ही सुनने लगे। उस समय में बछड़े की तो बात, यह तो बछड़े कह रहे हैं ना, थी चर जड़ और चेतन सभी लोग तन्मय हो गए वृद्ध के। गोपियां कह रही हैं, ओ हम तो ऐसी होती नहीं है, हमारा कैसा दुर्भाग्य, हम घर में बैठी हैं और कृष्ण बंसी बजा रहे हैं वहां गोविंदात्मनी दृशासु कलाश कृष्ण का, और उन गाय और बछड़े दोनों के आंखों में आंसू छल छला रहे, एक एक बंद करके गिर रहे हैं। किस तरह से, किस लिए? प्रेम, प्रेम प्रबुद्ध कर, प्रेम बढ़ गया। जब आकाश के बादल में जबकि ऐसे अश्रु आ जाते हैं और बछड़ों के आ जाते हैं, गायों के आ जाते हैं, किंतु हम ऐसे दुर्भाग्य निष्ठुर हृदय की बंसी की आवाज सुन करके भी मुग्ध नहीं हुई, घर से निकल नहीं गई। अभी हमें धैर्य है, लोक लज्जा का भी भय अभी हमारे अंदर, इसलिए तो नहीं जा रही हैं, तो अभी तक धैर्य है। यदि बंसी के धनुष सचमुच में हमारे हृदय में जाते तो धैर्य कहाँ उड़ जाता और कभी दौड़ करके पहुंच जाता, किंतु पहुंच नहीं पाते। कितनी बाधाएं हैं, अब मर करके जन्म लेंगे तो या तो गाय और गाय का बछड़ा होकर के या बछड़ी होकर के जन्म लेंगे। उस समय में कृष्ण की बंसी ध्वनि सुन करके मैं झट वहीं पर पहुंच जाऊंगी और कृष्ण जहां बंसी बजा रहे हो उनके चरणों की छत्र छाया में बैठ करके बस एकदम एक टक से उनको निहारूंगी और सब कुछ भूल जाऊंगी। ऐसे गोपियां करें, अच्छा ये गोपियों के हृदय में अधिक भाव हुआ है न बछड़ों के, ये तो कह रहे हैं ये हमारा दुर्भाग्य जैसा नहीं बन सकी, बछड़े ऐसे स्थिति, तो गोपियों की क्या दशा है, ये कैसी भावना कर रहे हैं। यदि साधक होना है, ऐसा कोई साधक हो सके ये कृष्ण की बंसी सुनने के लिए, उनका दर्शन करने के लिए ऐसा हृदय में विरह विप्रलम्ब भाव हो, ऐसी अनन्यमयता हो तो भजन हो सके। हम लोग धीरे धीरे इसी पथ पर अग्रसर हों। जन्म जन्मांतर तक तो ये सब विषय भोग पड़े हुए हैं, इस जन्म में भी उस जन्म में भी, मर करके यदि कुछ भी हुए, सुअर सुअरी भी हो गए तो भोग तो ये भी जो कर रहे हैं, ये तो खाना पीना बाल बच्चे पालन पोषण सब दुकानदारी व्यवसाय ये तो सब पड़ा हुआ है, ये कहाँ नहीं मिलेगा। ऐसा कोई जन्म है, नरकी भी जन्म हो, सुअर का भी जन्म हो तो ये सब तो चीजें मिलेंगी, बाल बच्चे भी मिल जाएंगे, सुअरी के सुअरी के बच्चे मिल जाएंगे, खाने के लिए मिल जाएगा, उनके बिछौना ओढ़ने बिछाने के लिए उनको नाले चाहिए गंदे, वो सब उनको अच्छी तरह से मिल जाएगा। कोई चिंता की बात नहीं है, जब मर जाएंगे तो ये नहीं मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। उनके सुख में और मनुष्य के सुख में कोई भी अंतर नहीं, बल्कि मनुष्यों को तो तरह तरह का भय है किंतु उनको तो भय नहीं। इसलिए यदि हमने इस जन्म में नहीं भजन नहीं किया तो पशुओं में और हम में कोई अंतर नहीं रहा। कुछ लोग जानते हैं प्रवचन करना होगा तो कर भी देंगे, ऐसा ही कीर्तन भी कर लेंगे खूब, किंतु एक पैसे का यदि हानि हो रही हो तो एक पैसे की हानि नहीं सहेंगे भगवत भजन करने के। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य है ये एक समय बना करके नियमित रूप से भगवान का भजन करे, चाहे जो कुछ भी हो जाए, खाना भी छूट जाए तो छूट जाए, व्यवसाय वाणिज्य भी छूट जाए, सब कुछ छूट जाए किंतु भजन न छूटे। जैसे शरीर के लिए भोजन अत्यंत अनिवार्य है, ऐसे आत्मा के लिए भजन करना भी अत्यंत अनिवार्य है, नहीं तो आत्मा दुर्बल हो जाएगी। विशेष करके एकादशी के दिन, और दिन नहीं होता है तो एकादशी का दिन ऐसा चयन करके रखना चाहिए, आज नियमित रूप से मैं इतना भजन करूंगी या करूंगा, आज मंदिर में जाऊंगा या जाऊंगी और वहां पर हरि कथा को श्रवण करूंगा। ये इंजेक्शन होता है, जैसे डॉक्टरों के पास जाने से इंजेक्शन देते हैं, संत लोग भी वाणी रूपी अपने इंजेक्शन से शक्ति संचरित करते हैं, जिसे भजन के लिए मन लगता है और उत्साह बढ़ता है, इसी को संग करते हैं। आजकल तो कितने तरह के ये सब बन गए हैं ना, जय गुरुदेव और क्या, भगवान के भजन से कोई भी संबंध नहीं, लाखों लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं किंतु क्या भजन और क्या चीज, कृष्ण से कोई भी संबंध नहीं। इसलिए आप लोग भगवान का खूब अच्छी तरह से एकांतिक चित्त होकर के भगवान का भजन करें और गोपियों के आदर्श में चलें। अंग श्यामलिम छटाभिरभितो मन्दे कृतेन्दीवरं जाड्यञ्जागुदरोति संविदधतङ्पट्टम्बरस्य श्रिया वृन्दारण्यनिवासिनं हृदि लसद्गानाभिरामोदरं राधास्कन्दनिवेशितं भक्त्या विहीनापराधलक्ष्यै चित्तास्य कामादितरङ्गमध्ये कृपामयीं त्वां शरणं प्रपन्ना वन्दे नमस्ते चरणाय गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः वैराग्यजुगभक्तिरसंप्रयत्नेऽपानन्नानुभेक्षु कृपां दुदिरिजापरदुःखदुःखी स्नातमिष्टं प्रभुमाश्रयामि श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स पदं यं प्रव्रजन्तमनुपम् एतदित्यं द्वैपायनोऽपिरः कातरया विभाव पुत्रेति तन्मयतया कर्वोऽभिनेतो तं सर्वभूतं मुनिमानुतोऽस्मि त्वैवास्मि त्वैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विद्याय राधे त्वं नयनां लाइट अ डोन आगे के श्लोक पूछने की बात कुछ लोग छिप रहे हैं कुछ लोग बोलो तुम ही बोलो যারা আগে লাইন থাকে আগে বলো আর একটু জোর পর টন টন কর ভেদাভেদ প্রকাশ সকল হবি হরে সাধন ভেদাভেদ প্রকাশ সকল
জীবের সঙ্গে ভগবানের ভেদও আছে অভেদও আছে
জীবিত পাথর আর এক সুখা পাথর ये सब सुख हैं इसमें जीव नहीं है इसमें जीव नहीं है इसमें जीव नहीं है ये सब में जीव नहीं है ये बढ़ नहीं सकते इनमें अनुभूति नहीं है इनमें सुख की स्पृहा नहीं है इसलिए ये जड़ जीव इसके अंदर में है ये ऊपर का जड़ है नीचे का भीतर का चेतन इन दोनों के साथ में जो दोनों वस्तुएं हैं इन सभी के साथ में भगवान का भेद भी है अभेद भी वो जीव दो प्रकार के हैं एक नित्य मुक्त और एक नित्य बद्ध माने अनादिबद्ध नित्यबद्ध माने आशा समझो जो कभी वो मुक्त नहीं होगा तो ये जो जीव हैं भगवान से इनका क्या संबंध है कौन है ये मुक्त जीव किसको कहते हैं बद्ध जीव किसको कहते हैं बोल तो तुम बोलो ये तो सहज बात माया से जो मुक्त हैं वो मुक्त और माया से जो बंधे हुए हैं वो हैं जीव बद्ध क्यों हुआ बोलो सुख सुबह स्वरूपता हुआ बद्ध है कि मुक्त है जीव स्वरूपता बद्ध है कि मुक्त है आखिर दोनों है हैं तो बोल तो नहीं पाता जीव स्वरूपतः मुक्त होता है किंतु फिर वो बद्ध क्यों हो गया बोलो क्यों बद्ध हुआ बद्ध क्यों होता है जीव एक आदमी जेल में क्यों जाता है? हैं? हमको सुनाएं क्या बोला जी?
भगवान की माया की तरफ जब बहुत दृष्टि करता है, जब भगवान सेवा को भूल करके जब बहुत दृष्टि करता है, तब
तुम बोलो तो तुम बोलो तो कृष्ण को भूलना है, भूल करके तो माया की तरफ में दृष्टि करता है भोग के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि वो कभी ना कभी भगवान की सेवा में नियुक्त था, उसको भूल गया। तब तो ये जीव स्वरूपतः भगवान की सेवा में नियुक्त था और फिर उसको भूला, तब ईश्वर माया ने दंड दिया इधर आने के लिए। क्या हुआ? वहां से कुछ जीव मुक्त हो जाते हैं, कुछ बद्ध हो जाते हैं, ऐसा क्यों? सबको एक ही समान होना चाहिए, तो ऐसा क्यों होता है? तुम बोलो। ऐसा ही जीव स्वरूपतः कृष्ण का दास। अब तटस्था शक्ति वाले जो भगवान के पास में है, जो बलदेव प्रभु जी से निकले हैं, वो तो नित्य ही भगवान की सेवा करते हैं। महासंकर्षण से जो जीव उद्भूत होते हैं वो लोग भी वो सेवा करते हैं। ये लोग तटस्थ शक्ति में भी कभी नहीं आए, ये लोग नहीं आए, वो नित्य ही वहां पर सेवा कर रहे हैं। तटस्थ शक्ति से कारण समुद्र में वहाँ जो कर्णाधिशायी विष्णु हैं, उनसे स्फुल्लिंग की भांति अगिणत जीव, अनंत जीव प्रकटित होते हैं। प्रकटित होने हैं कहता है, ये कहते हैं, भाषा में कोई दूसरा शब्द नहीं है जो उसके बदले में दे सके। ये जड़ भाषा में कुछ दोष ऐसा है जो इसको कहना पड़ता है, जिसे वहाँ से निकले हैं, कभी जीव निकले नहीं, स्फुलिंग की भांति वो सब समय है। उन जीवों में से कुछ अपने स्वतंत्रता का अपव्यवहार किया, वो माया में चले आए। जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता का सदव्यवहार किया, वो फिर भगवान की सेवा में नियुक्त हो, वो लोग बद्ध नहीं। इसलिए कि भगवान ने हमें अपने तरह ही स्वतंत्र बनाया है जीव को। ये स्वतंत्रता एक बड़ा भारी मूल्यवान चीज है, इस पर भगवान नहीं हस्तक्षेप करते, गुरु भी हस्तक्षेप नहीं करते, कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मध्यम अधिकारी थोड़ा सा हस्तक्षेप करता है, किंतु भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करते, उसके इच्छा पर छोड़ देते हैं।
नहीं,
वही वही कारण, वही कारण किया जो इसी की स्वतंत्रता भगवान ने उसको दे रखा, उसका स्वरूप निर्माण ऐसा हुआ, कभी नहीं हुआ निर्माण। तभी कहते हैं भाषा के लिए ये जीव का स्वरूप ही जब से गठित हुआ उसमें दो चीजें हैं, एक तो वो भगवान का सेवक है पोटेंसी से ही, किंतु वो पोटेंसी बीज के रूप में वहां पर है, और उसी के साथ में ये भी बनाया कि जीव स्वतंत्र रहेगा सब समय, कोई भी काम अपनी इस स्वतंत्रता का व्यवहार करने के लिए वो सब समय उसको छूट रहेगी, कोई हस्तक्षेप मैं भी नहीं करूंगा, विशेष विशेष परिस्थिति की बात अलग, नहीं तो कभी नहीं करूंगा। अब स्वतंत्र करके जीव का गठन स्वरूप करके और छोड़ दिया, छोड़ने के बाद में उसको दिया जैसे ये करना है या ये करना है, दोनों में से तुम एक चुन लो। अब चुनने में भगवान उस पर बाधा नहीं डालते हैं, ये तुम कौन सा चीज, भोग का अधिकारी रहता है वहां, वो बस वो स्याही रख देता है लगा कर, स्टैंप लगा के, अब कहेगा जैसे अब आप किसी को भी जिसको वोट देना चाहते हैं अब वो अपनी इच्छा से जिसको चाहता है दे सकता है, तो उसने माया का बिट्टो कर दिया, वोट दे दिया तो माया में आ गया, और यदि भगवान की सेवा बाकी तो उन्हें, इसलिए भगवान निरपेक्ष रहे, उन पर कोई दोष नहीं है, ये नहीं चाहते कि ये हमारी तरफ में आए तो आए ऐसे हम बुद्धि करते, नहीं तो करते तो सभी जीव आ जाते, इसलिए जीव की स्वतंत्रता के ऊपर में कभी हस्तक्षेप नहीं करते, उसमें माया की तरफ ही देखा, उधर ही लुप्त हो गया, विचार करने का समय नहीं था, झट इधर जाएगा ना उधर जाएगा, इसलिए स्वतंत्रता का अपव्यवहार और सदव्यवहार इसी को बस, इसलिए यहाँ पर भूली क्यों लिखा गया, कृष्ण भय मुख या भगवान छा करे ना,
कृष्ण भूली
से जीव अनादे पड़े, कृष्ण भूली क्यों, स्वरूप में तो उसका है ना कृष्ण का सेवकत्व, इसे भूल करके और लिखा, इसलिए वहां का, और विशेष बातें हम लोग मुक्त होने पर समझ सके, या जितना उत्तम होते चले जाएंगे धीरे धीरे इस विषय को समझ, जीव माया में आ गया ये यहां का नहीं है, गोलोक बैकुंठ धाम का ही नित्य ये है सेवक, इस जगत में आने पर किसी भी जीव को सुख और शांति नहीं मिलती, किसी को नहीं मिलती, मिलने का स्थान ही नहीं है ये जगत, ये तो जेल खाना है, एक न एक दिन उनको बाहर जाकर के ही सुख और शांति मिलेगी, तो वो कैसे सुख और शांति उनको मिल सकती है, और इसका प्रमाण क्या है, जो सुख शांति मिलेगी ही इसी पथ के द्वारा, कौन सा पथ है, भक्ति पथ बतलाते हैं, साधनम शुद्ध भक्ति, विद्ध भक्ति नहीं, शुद्ध भक्ति होनी चाहिए, उत्तमा भक्ति जो कहा ना वही शुद्धा भक्ति माने उत्तमा भक्ति, तो यदि उत्तमा भक्ति किसी को हुई जिस समय होगी उस समय में अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर के भगवान की सेवा पाएगा, उसी समय उसे सुख और शांति हो सकती है, अन्यथा लाख चेष्टा करे सुख शांति नहीं हो सकती। अब शुद्धा भक्ति किसको कहते हैं, कल इस पर विचार करें, आप लोग सब विचार करके आएंगे, शुद्धा भक्ति किसको कहते हैं,
जीवन प्रकृति का
विभिन्न अंश कहने का ये अंश कहते हैं, स्वांश को अंश कहते हैं, जब भगवान सच्चित आनंद तीनों शक्तियों से संबित संधिनी लादिनी इन प्रवृत्तियों से और अपनी समस्त प्रकार की शक्तियों से परिपूर्ण रह करके उनसे जो खंड अंश होता है उसको स्वांश कहते हैं, स्वांश ही कहते हैं। अब उसी को पीछे से जब जगत में वो अवतरित होते हैं तो अवतार, नहीं तो उस जगत में रहने पर वो अवतार ही नहीं रहे, वो स्वांश है। अब उस स्वांश के बहुत से भेद हैं, किंतु उनकी शक्ति, उनकी शक्ति, उनकी शक्ति और भगवान से युक्त रह करके जब तटस्थ शक्ति उनसे युक्त रहती है, केवल ऐसा हो नहीं सकता, कभी हो सकता है। जैसे हम सूर्य के प्रकाश को, अग्नि के तेज को बांध देते हैं, खूब मोटा प्लास्टिक लेकर के और बिजली के तार के ऊपर में लगा दें तो उसको छूने से कुछ नहीं होगा, और यदि आवरण ना रहे और छुए तो आदमी मर जाएगा। तो उसमें उसकी शक्ति को बांध दिया गया, मंत्र के द्वारा भी शक्ति को बांध देते हैं। आप लोग देखा होगा कि नहीं, हमने तो देखा है, आग को बांध देते हैं, आग जल रही है, लपट उठ रही है और उसमें खाली पैर चल रहे हैं, बांध देते हैं मंत्र के द्वारा। सांप है ना, सांप को बांध देंगे मंत्र के द्वारा और उसको बुला लेंगे, जिसने सांप ने काटा है ना, मंत्र ऐसा पढ़ेंगे जैसे वो सांप एकदम भाग जाए। ये सब मंत्र के द्वारा कर लेते हैं। तो भगवान अपने मंत्र के द्वारा अर्थात अचिंत शक्ति के प्रभाव से जो घटन अघटन पटियसी शक्ति जो नहीं होगा उसको भी कर देते हैं।